हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 7-13। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्थाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गीनया कल्पिता श्रीमद् भागवतम् प्रमाणममालम् प्रेम उमर्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो नापर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबर दरुण बिंब फल धरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जानि करारविंदे न पदारविंदम् मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दम् मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जिहवे विवस्वा मृत्युमेत देवा गोविंद दामो धर्माधवीति बर्हापीरं नटवरवपुकर्णियो कर्णिकारं विभ्रात्वासः कनकपिशं वैजन्तीं शमाल्यं रन्ध्रान् वेणु अदरसुधया पूर्णयो गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत्कीर्तकीर्ति जय जय श्री राधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपी चित छोर प्रभु जय जय माखन छोर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय श्री राधा गोपीनाथ भगवान की ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 7। जैसा कि हमने पढ़ा कि जब विदुर ने कृष्ण और उसके संबंधियों के विषय में उद्धव जी से पूछा तो उनको भगवान की स्मृति इतना तीव्रता से होने लगी कि कुछ क्षण के लिए तो वो मौन हो गए, उनका गला रुध गया, शब्दों ने उनका साथ नहीं दिया और वो कुछ बोल ही नहीं पाए, क्योंकि भगवान के भक्त जब भगवान को स्मरण करते हैं तो वो भगवान का सानिध्य ही अनुभव करते हैं और वो विरह जो कि कृष्ण देखकर गए थे उसके कारण उद्धव जी के मुख से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे। लेकिन जब उन्होंने सोचा कि मुझसे विदुर जी कुछ पूछ रहे हैं तो पुनः अपने भौतिक धरातल पर आए और फिर उद्धव जी विदुर जी को वो सब बताने लगे कि उनके बाद उनके तीर्थ यात्रा पर जाने के बाद हस्तिनापुर में द्वारिका में जो कुछ घटित हुआ वो वर्णन करने के लिए उनको कितना कष्ट हो रहा है, क्योंकि बहुत ही दुखदायक समाचार अब वो विदुर जी को देने वाले हैं। और हम आज वहीं से प्रारंभ करेंगे श्लोक नंबर 7 जो कि उद्धव जी बोल रहे हैं। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। उद्धव उवाच कृष्णद्युमणि निम्लोचे गिणेश्व जगरीणः किं नुनः कुशलं ब्रूयां गत श्रीषु गृहेष्वहं कृष्णद्युमणि निम्लोचे गृणेष्व जगरीणः किं नुनः कुशलं ब्रूयां गत श्रीषु गृहेष्वहं। शब्दार्थ उद्धव उवाच। उद्धव ने कहा कृष्ण युद्धमणि, कृष्ण द्युमणि का मतलब होता है कृष्ण सूर्य के समान है, निम्लोचे अर्थात अस्त हो गए, गीर्णेशु निगला जाकर अजगरेण अजगर स्वर्ग के द्वारा ही भूतकाल में। किम नु न कुशलम रूयम, किम मना क्या नु अन्य न हमारा कुशलम कुशल मंगल ब्रूयाम में कहूं। गत यानी गई हुई या विहीन श्रीशु गृहेशु घर में, अहम अर्थात में कृष्ण द्युमणि निम्लोचे, वो यदुकुल का जो सूर्य था वो तो अस्त हो गया और उनके जाने के बाद तो हमारे घर को काल रूपी भारी अजगर ने निकल लिया। अब हमारे पास रह क्या गया है? अब हमारा कुशल पूछ रहे हो? अब ये पूछ रहे हो कि पांडव कैसे हैं? अब ये पूछ रहे हो कि यदुवंशी कैसे हैं? हमारे सुख का एक ही एकमात्र केंद्र था कृष्ण और कृष्ण चले गए। किम नु ना कुशल अमरुयम, अब आपको क्या बताए क्या हमारा हम किस कारण से खुश होंगे? क्या हमारी खुशी का, हमारी संतुष्टि का, हमारे आनंद का कोई और कारण हो सकता है क्या? अनुवाद देखिए। श्री उद्धव ने कहा हे विदुर, संसार का सूर्य कृष्ण अस्त हो चुका है और अब हमारे घर को काल रूपी भारी अजगर ने निकल लिया है। मैं आपसे अपनी कुशलता के विषय में क्या कह सकता हूँ? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण रूपी सूर्य के अस्त होने की व्याख्या श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका के अनुसार इस प्रकार की जा सकती है। जब विदुर को महान यदुवंश के तथा अपने परिवार कुरुवंश के संहार का संकेत मिला तो वे अत्यधिक उद्विग्न हो उठे। उद्धव विदुर के शोक को समझ गए, अतः उन्होंने सर्वप्रथम यह कहकर कि सूर्य के अस्त होने पर सारे लोग अंधकार में हैं, संवेदना प्रकट करना चाहिए, क्योंकि सारा जगत शोक के अंधकार में डूबा था। अतः ना तो विदुर, ना उद्धव, ना ही अन्य कोई प्रसन्न रह सकता है। विदुर जितने ही, उद्धव भी दुखी थे। अतः उनके कुशल क्षेम के विषय में इससे अधिक कहने के लिए उनके पास कुछ ना था। श्री प्रभुपाद जी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका के अनुसार बता रहे कि जब सूर्य अस्त हो जाता है तो हर जगह अंधकार फैल जाता है। और कृष्ण द्युमणि निम्लोचे, कृष्ण भी सूर्य की तरह थे यदुवंशियों के लिए, पूरे संसार के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए। और कृष्ण रूपी सूर्य जब अस्त हो गया तो संसार के आनंद का कोई सवाल ही नहीं उठता। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, सूर्य से कृष्ण की तुलना उपयुक्त है। सूर्य के अस्त होते ही अंधकार स्वतः छा जाता है, किंतु सामान्य व्यक्ति द्वारा अनुभव किया गया अंधकार सूर्य को प्रभावित नहीं करता, चाहे समय सूर्योदय का हो या सूर्यास्त का। कृष्ण का आविर्भाव तथा उनका तिरोभाव सूर्य के ही समान है। वे असंख्य ब्रह्मांडों में प्रकट होते तथा अंतर्धान होते रहते हैं, और जब तक वे किसी ब्रह्मांड विशेष में विद्यमान रहते हैं तब तक उस ब्रह्मांड में दिव्य प्रकाश रहता है। किंतु जब ब्रह्मांड से वे चले जाते हैं वे अंधकार में समा जाता है, तो भी उनकी लीलाएं शाश्वत हैं। भगवान सदैव किसी न किसी ब्रह्मांड में विद्यमान रहते हैं। जिस तरह सूर्य पृथ्वी या पश्चिमी गोलार्ध में विद्यमान रहता है, सूर्य सदा ही भारत में या अमेरिका में रहता है। किंतु जब सूर्य भारत में रहता है तो अमेरिका में देश में अंधकार में रहता है, और जब सूर्य अमेरिका में रहता है तो भारतीय गोलार्ध अंधकार में रहता है। जिस तरह सूर्य प्रातः काल उदय होता है और क्रमशः मध्याकाश में पहुंचता है, तत्पश्चात किसी गोलार्ध में अस्त होकर उसी के साथ किसी अन्य गोलार्ध में उदय होता है, उसी तरह किसी एक ब्रह्मांड से भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने के साथ अन्य ब्रह्मांड में उनकी विभिन्न लीलाओं का शुभारंभ होना है। ज्यों ज्यों ही यहाँ कोई एक लीला समाप्त हो जाती है त्यों ही वह अन्य ब्रह्मांड में प्रकट होती है। इस तरह उनकी नित्य लीलाएं निरंतर चलती रहती हैं। जिस तरह सूर्योदय 24 घंटों में एक बार होता है, उसी तरह एक ब्रह्मांड में कृष्ण की लीलाएं ब्रह्मा के एक दिन में संपन्न होती हैं। श्रीमद् भगवत गीता में ब्रह्मा के एक दिन का विवरण 4,30,00,00,100 वर्ष दिया गया है, किंतु भगवान जहां भी उपस्थित हैं उनकी समस्त विविध लीलाएं नियमित अंतराल पर होती रहती हैं, जैसा कि शास्त्रों में बतलाया गया है। सूर्यास्त के समय सर्प प्रबल होते हैं, चारों ओर प्रोत्साहन मिलता है, भूत प्रेत सक्रिय होते हैं, कमल म्लान हो जाता है तथा चक्रवा की विलाप करने लगती है। उसी तरह भगवान कृष्ण के तिरोभाव से नास्तिक प्रफुल्लित होते हैं और भक्तगण दुखी होते हैं। श्रील प्रभुपाद की अत्यंत ही सुंदर रीति से श्रील प्रभुपाद जी ने भगवान के तिरोभाव यानी तिरोधान यानी भौतिक जगत से भगवान की लीला समेटने के इस प्रसंग को सूर्यास्त के विषय में बताया कि जब सूर्यास्त हो जाता है तो संसार में अंधकार हो जाता है, लेकिन इससे सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सूर्य तो किसी न किसी कंट्री में उस समय उदय होता है जिस समय हमारे कंट्री में वो अस्त होता है। तो सूर्य तो नित्य प्रति कहीं न कहीं उपस्थित ही रहता है,
तो लेकिन अंधकार या दुख उस देश के लिए है जहां पर उसका अस्त हुआ। उसी तरह से भगवान की लीलाएं तो नित्य किसी न किसी ब्रह्मांड में चलती रहती हैं। भगवान की एक लीला एक ब्रह्मांड में समाप्त होती है तो दूसरे ब्रह्मांड में प्रारंभ होती है। ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान आते हैं और अपनी लीला करके जाते हैं, तो हर ब्रह्मांड में भगवान अलग अलग समय पर लीलाएं करते हैं। तो भगवान का जाना सूर्य अस्त की तरह उपयुक्त है, क्योंकि सूर्य जिस तरह अस्त होता है और वहां पर अंधकार हो जाता है जहां पर वो अस्त हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रकाश उत्पन्न होता ही। लेकिन उसी तरह से भगवान जब इस भौतिक धरातल पर चले गए, जैसे यहाँ बताया कि सूर्य के अस्त होने पर हर जगह अंधकार होता है और जो भूत प्रेत होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, चोर लुटेरे जो हैं वो प्रोत्साहित हो जाते हैं। तो उसी तरह से जब भगवान कृष्ण का तिरुभाव हुआ तो नास्तिक जो है वो बहुत खुश हुए, और जब जो भक्त हैं उनकी तो दशा ऐसी थी जैसे मछली से यदि उसका पानी छीन लिया जाए और उसे पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो उनके उसके पास तड़पने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। उसी तरह भक्त भगवान के विरह में उसके पास और कोई साधन नहीं है जीने का या प्रसन्न होने का। तो यहाँ दोनों भक्त उदास हैं, दुखी हैं, खेद प्रकट कर रहे हैं। उद्धव जी बता रहे हैं, विदुर जी सुन रहे हैं कि भगवान के जाने के बाद यदुवंशी और हम सब कितने दुखी हैं। तो हमारे कुशल का तो कोई सवाल ही नहीं उठता जो आप पूछ रहे हो कि ये कैसे हैं वो कैसे हैं। आगे उद्धव जी कहते हैं, दुर्भगो बदलो कोयम यदवो नितरामपि ये सं वसंतो न विदु हरिमीना इवोडुपम। दुर्भगो बदलो कोयम यदवो नितरामपि ये संवसंतो न विदु हरिमीना इवोडुपम। दुर्भगो बतलोकोयम, दुर्भगो यानी दुर्भाग्यशाली, अभागा बत निश्चित ही लोकम यानी ब्रह्मांड, अयम यानी ये ब्रह्मांड निश्चित रूप से अभागा है। यदवो नितराम अपि, यदवो अर्थात यदुकुल नितराम विशेष रूप से अभागा है। संसार तो अभागा है लेकिन यदुकुल जो है उससे भी ज्यादा। ये संवसंतो, जो संवसंतो मतलब एक साथ रहते हुए भगवान का इतना निकट सानिध्य प्राप्त हुआ परंतु न भी तू नहीं जान पाए, हरि को भगवान को जान ही नहीं पाए। कोई अपना बच्चा समझ रहा है, कोई अपना पोता समझ रहा है, कोई अपना मित्र समझ रहा है, वो भगवान है, त्रिलोकी के नाथ है, परंतु वो कितने अभाग्यशाली हैं कि उन्होंने ये संवसंतो न विदु, उन्होंने भगवान को जाना ही नहीं। किस तरह नहीं जाना? मीना यानी मछलियां एव डुपा, चंद्रमा को मछलियां जानती नहीं है, उसी तरह से भगवान उनके समीप था परंतु वो भगवान को जान नहीं पाए। श्रील प्रभु अनुवाद देखिए। समस्त लोकों समेत यह ब्रह्मांड अत्यंत अभागा है। यदुकुल के सदस्य तो उनसे भी बढ़कर अभागे हैं क्योंकि वे श्री हरि को भगवान के रूप में नहीं पहचान पाए, जिस तरह मछलियां चंद्रमा को नहीं पहचान पाती। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, उद्धव इस संसार के उन अभागे लोगों के प्रति शोक व्यक्त कर रहे थे जो भगवान कृष्ण के समस्त दिव्य सद्गुणों को देखते हुए भी उन्हें नहीं पहचान पाए। राजा कंस के बंदीघर के सीकचों के भीतर उनकी प्राकट्य से लेकर उनकी मौसल लीला तक मूर्ख लोग यह नहीं समझ पाए कि वे भगवान थे। यद्यपि उन्होंने भगवान के रूप में अपना षडेश्वरीय धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग प्रदर्शित किया था, मूर्ख लोगों ने उन्हें एक अद्वितीय ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में समझा होगा, क्योंकि भगवान से उनका घनिष्ठ संपर्क नहीं था। किंतु इनसे भी अधिक अभागे भगवान के पारिवारिक सदस्य यदुवंशी थे, जो भगवान के संग में सदैव रहते हुए भी उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं पहचान पाए। उद्धव ने अपने भाग्य पर भी शोक किया था, क्योंकि कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हुए भी इस अवसर का लाभ भगवान की भक्ति करने में नहीं उठा पाए। उन्होंने स्वयं समेत सबों के भाग्य पर खेद प्रकट किया। भगवान का शुद्ध भक्त अपने को सर्वाधिक अभागा ही सोचता है, ऐसा भगवत प्रेम की अधिकता के कारण होता है, और यह विरह की दिव्य अनुभूति में से एक है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी कितना सुंदर बता रहे कि भक्त जो है वो हमेशा यही सोचता है, मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, मैं भगवान को अच्छे से पूजा नहीं कर पाता, मैं भगवान की अच्छे से भक्ति नहीं कर पाता, मैं अच्छे से नाम जप नहीं कर पाता, मेरी साधना अच्छी नहीं है। और भगवान को जानते हुए भी अब ये कितना बड़ा सौभाग्य है, हम थोड़ा सा सोच सकते हैं। एक बार अगर हम थोड़ा सा इस बात पर सोचें कि साक्षात त्रिलोकी के नाथ, जिनकी केवल प्रकृति मात्र से पूरा जो ब्रह्मांड है वो उबल जाता है, सप्तलोक जो है वो 14 भवन जो है वो त्राही त्राही कर सकते हैं, वो त्रिलोकी नाथ जब हमारे गोकुल में जन्म लेते हैं तो वो उनको कोई पहचानता नहीं है, वो छाछ पिलाने के लिए उसको कितनी तरह दवा सताते हैं, नाच करवाते हैं, उनको माखन खिलाने के लिए, कभी कभी तो माता उनके पीछे डंडी लेकर दौड़ती है, कभी रस्सी से बांध देती है। तो ये भगवान है, इत्रलोकी के नाथ है, वो हमारे साथ रहने के लिए आते हैं, हमें तो उनको सर्वाधिक पूज्य मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए, परंतु हमें से कोई उनको पहचान भी नहीं पाया। कितने अभागे हैं, कितने दुर्भाग्यशाली हैं। वास्तव में ये जो कुछ हुआ वो भगवान की इच्छा से, भगवान स्वयं ऐसा चाहते थे, वो उस प्रेम का आस्वादन करना चाहते थे जो कि उन्हें वैकुंठ में, उन्हें गौलोक में भी ना मिल सका। लेकिन फिर भी कहते हैं कि कदर जीव की तब होती है जब वो बिछड़ जाता है या अलग हो जाता है। उसी तरह से जब तक कृष्ण थे तब तक तो सारे उद्धव जी और सारे जितने भी यदुवंशी उन्हें अपना बच्चा, अपना मित्र मानते थे, और हर्ष उनको लगता है कि कृष्ण गए, कृष्ण आए थे तो उनको हमने यदि भगवान की तरह उनको प्रेम किया होता या भगवान की तरह उनकी पूजा की होती तो ज़्यादा सही था। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, शास्त्रों से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रमा का जन्म क्षीर सागर से हुआ। क्षीर सागर ऊपरी लोकों में है और उसमें भगवान विष्णु जो परमात्मा रूप में हर जीव के हृदय को नियंत्रित करने वाले हैं, क्षीरो दक्षाय विष्णु के रूप में निवास करते हैं। जो लोग क्षीर सागर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, उन्होंने समुद्र में केवल नमकीन यानी खारे जल का अनुभव किया है। उन्हें यह जान लेना चाहिए कि यह संसार गो भी कहलाता है, जिसका अर्थ है गाय। गाय का मूत्र नमकीन होता है और आयुर्वेदिक औषधि में गाय का मूत्र यकृत से पीड़ित रोगियों का उपचार करने में अत्यधिक प्रभावशाली होता है। ऐसे रोगियों को गाय के दूध का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि यकृत रोगियों को दूध कभी नहीं दिया जाता, किंतु यकृत रोगी को जानना चाहिए कि गाय दूध भी देती है, भले ही उस रोगी ने दूध कभी ना चखा हो। उसी तरह जिन लोगों को इस क्षुद्र लोक का ही अनुभव है, जिसमें केवल नमकीन जल का सागर विद्यमान है, वे शास्त्रों से यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि दूध का भी सागर क्षीर सागर होता है, भले ही उन्होंने उसे ना देखा हो। इस क्षीर सागर से चंद्रमा उत्पन्न हुआ था, किंतु क्षीर सागर की मछलियां ये नहीं पहचान पाई कि चंद्रमा उन जैसी मछली नहीं है। मछलियों ने चंद्रमा को अपने जैसा मछली या कोई चमकीली वस्तु से अधिक कुछ नहीं मान रखा था। वे अभागे लोग जो कृष्ण को नहीं पहचान पाते, वे ऐसे ही मछलियों के तुल्य हैं। वे उन्हें अपने में से एक किंतु ऐश्वर्य बल आदि में कुछ अद्वितीय करके मानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 9.11 में ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को सर्वाधिक अभागा कहा गया है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान कहते हैं, जब मैं मनुष्य रूप धारण करता हूँ तो जो मूढ़ है वो मुझे नहीं जान पाते कि मैं भगवान हूँ, वो मेरे परम भाव को नहीं जानते। इंगित क्या परो प्रोणा एक रामाश्च सात्वता सात्वता मृषभम सर्वे भूतावा सममंसत। इंगित क्या परो निंगित क्या पुरु पौणा एक रामाश्च सात्वता सात्वता मृषभम सर्वे भूतावा सममंसत। इंगितज्ञा परोपणौरा, इंगितज्ञा मतलब मनोवैज्ञानिक अध्ययन में पटु, पुरोपणौरा अत्यंत ही अनुभवी, एक आराम, एक आराम मना विश्राम च जमना भी सात्वतम भक्तगण या अपने ही लोग जो भक्तगण थे वो सात्वतम ऋषभ परिवार के मुखिया जो सात्वत थे परिवार के मुखिया थे वो सब मनोवैज्ञानिक थे, बहुत अनुभवी थे, विश्राम थे, सब उनके अंदर बहुत सारे गुण थे। सर्वे भूत आवासम आवासम मना सर्वव्यापी अमसंसता, लेकिन फिर भी वो भगवान को तो कृष्ण के रूप में नहीं जान सके, बल्कि किस तरह से जान सके कि भगवान जो है वो सर्वव्यापी है। भूत आवास मतलब सर्वव्यापी भगवान ब्रह्म के रूप में जान सके, परंतु भगवान को असल में भगवान कैसे वैसे समझ नहीं पाए। अनुवाद देखिए, यदुगण अनुभवी भक्त विद्वान तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन में पटु थे। इससे भी बड़ी बात यह है कि वे सभी लोग समस्त प्रकार से की विश्रांति में भगवान के साथ रहते थे, फिर भी वे उन्हें केवल उस ब्रह्म के रूप में जान पाए जो सर्वत्र निवास करता है। श्रील प्रभुपाद की, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, वेदों में कहा गया है कि परमात्मा को मात्र विद्वत्ता या मानसिक चिंतन के बल पर नहीं समझा जा सकता। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। कठोपनिषद में बताया गया है कि भगवान को नायमात्मा प्रवचन केवल प्रवचन सुनने से नहीं समझा जा सकता, मेधया यानी बुद्धि से, बहुन श्रुति और बहुत बहुत शास्त्र पढ़ने से भगवान को नहीं सुना जा सकता, नहीं समझा जा सकता। वे केवल उसके द्वारा किए हैं जिसे भगवत कृपा प्राप्त होती है। भगवान कहते हैं कि तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते। जो प्रेम के साथ सदैव मेरे नाम का रटन करते हैं, मेरा भजन करते हैं, उन्हें ही ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वो मुझे जान सकते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, सारे यादव असाधारण विद्वान एवं अनुभवी थे, किंतु भगवान को हर एक के हृदय में वास करने वाले के रूप में जानते हुए भी वे ये नहीं समझ पाए कि वे आदि भगवान हैं। ज्ञान की यह कमी उनके अपर्याप्त पांडित्य के कारण नहीं अपितु उनके दुर्भाग्य के कारण था। किंतु वृंदावन में भगवान परमात्मा रूप में भी विख्यात नहीं थे, क्योंकि वृंदावन के निवासी भगवान के शुद्ध अनौपचारिक भक्त थे और वे उन्हें अपने प्रेम का एकमात्र लक्ष्य मानते थे। वे ये नहीं जानते थे कि वे भगवान हैं, किंतु यदुगण अथवा द्वारिकापुरी के निवासी कृष्ण को वासुदेव के रूप में या सर्वत्र निवास करने वाले परमात्मा के रूप में जानते थे, अपितु परमेश्वर के रूप में नहीं जानते थे। वेदों के विद्वान होने के नाते वे वेदों के स्त्रोत्रों एको देव सर्वभूताधिवास अंतर्यामी तथा ऋषिणाम पर देवता की पुष्टि करते थे। इसलिए यदुओं ने भगवान कृष्ण को परमात्मा के रूप में स्वीकार किया जिन्होंने उनके परिवार में अवतार लिया था, इससे अधिक और कुछ नहीं जानते थे। भगवान कहते हैं, ना वेदायर न तपसा ना दाने न शेषया। तो भगवान कहते हैं, ना वेद पढ़ने से, न तपस्या करने से, न दान देने से, न यज्ञ करने से, न पूजा करने से मैं जाना चाह ही नहीं सकता, परंतु मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव विदुर्जुन। केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। तो अगर भगवान को जानना है तो उसके लिए भक्ति आवश्यक है, और भक्ति का मतलब बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है, बस इस महामंत्र को रटना है, रटना है, रटते रहना है। इसी से भगवान प्रकट होंगे, हृदय में संपूर्ण ज्ञान प्रकट होगा। कृष्ण और भगवान ने कहा, ज्ञातम दृष्टम, तो आप मुझे जान लोगे, मुझे देख लोगे, प्रवेष्टम और मुझे प्राप्त कर लोगे। तो आगे उद्धव जी कहते हैं, लोग चाहे कुछ भी कहें, परंतु जो पूरी रीत से भगवान के शरणागत है, उनकी बुद्धि को जो लोग मोहित होते हैं, मोहित व्यक्तियों के कितने भी प्रवचन हो, भगवान के शरणागत भक्तों को कभी भी विचलित नहीं कर पाते। विदु जी को उद्धव जी कहते हैं, देवस्य मायया स्पृष्टा ये चायन्यद सदाश्रिता ब्राह्म्यन्ते दीर्ण तत्वाख्याय रात्मन्यु तात मनोहरो। देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यत सदाश्रिता ब्राह्म्यते दीर्ण तत्वाख्याय आत्मन्यो युक्तात्मनो हरि। देवस्य मायया स्पृष्टा, देवस्य यानी भगवान की मायया मतलब माया के प्रभाव से स्पृष्टा दूषित हुए, ये चान्य ये मतलब जो लोग च तथा अन्यत मतलब अन्य लोग असत, असत का मतलब होता है मायावी आश्रिता वशीभूत होते हैं। ब्राह्म्यते धीर्ण, ब्राह्म्यते मतलब मोहग्रस्त बनाते हैं, धी यानी बुद्धि न मतलब नहीं, तत् उनकी वाक्य वचनों से आत्मनि उपत आत्मनः, आत्मनि यानी परमात्मा में उपत आत्मना शरणागत आत्माएं हरव,
हरि के प्रति। अनुवाद, भगवान की माया द्वारा मोहित व्यक्तियों के वचन किसी भी स्थिति में उन लोगों की बुद्धि को विचलित नहीं कर सकते जो पूर्णतया शरणागत हो। श्रीला प्रभुपाद की। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, वेदों के समस्त प्रमाणों के अनुसार श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। सभी आचार्यों ने, यहाँ तक कि श्रीपाद शंकराचार्य ने, उन्हें भगवान स्वीकार किया है। किंतु जब कृष्ण इस संसार में विद्यमान थे तो विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से उन्हें स्वीकार किया। अतः भगवान विषयक उनके अनुमान भी भिन्न भिन्न थे। सामान्यतः जिन लोगों को शास्त्रों में विश्वास था उन्होंने भगवान को यथारूप में स्वीकार किया और इस जगत से भगवान के अंतर्ध्यान होने पर सारे लोग उनके विकट विछोह में डूब गए। प्रथम स्कंद में हम अर्जुन तथा युधिष्ठ के शोक की विवेचना कर चुके हैं, जिनके लिए कृष्ण का अंतर्ध्यान होना उनके जीवन के अंत तक अतीव असह्य बना रहा। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो लोग शास्त्रों पर विश्वास करते हैं और जो लोग भगवान कृष्ण को भगवान मानते हैं, उन्होंने तो भगवान के जाने के बाद बहुत बहुत खेद, दुख, इतना असह्य, जैसे जीवन धारण करना ही कठिन हो गया। कुंती महारानी तो जैसे ही सुना कि कृष्ण अब इस भौतिक, जब अर्जुन वो समाचार लेकर आए थे, अर्जुन के पास वो बोल नहीं पा रहे थे, युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे थे, अर्जुन तुम इतने दुखी क्यों हो, क्या तुमसे कोई ऐसा अपराध हो गया है, क्या तुमसे कोई दान लेने आया तुम उसको नहीं दे पाए, क्या सुरक्षा के लिए किसी ने तुमसे याचना की और तुम नहीं कर पाए, क्या हुआ ऐसा कि तुम्हारा मुख इतना मलिन है, तुम ये बताओ कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण ने संसार को छोड़कर जाने का निश्चय कर लिया, क्या कृष्ण अभी है या वो चले गए। जैसे ही अर्जुन ने कहा कि यदुवंश का वो सूर्य अस्त हो गया, उसी समय कुंती महारानी के प्राण निकल गए। मत कतः प्राणा का प्रत्यक्ष उदाहरण है कुंती महारानी, और जब तक जीवित रहे युधिष्ठिर महाराज और संपूर्ण पांडव जो है उनके लिए भगवान के विछोह का दुख असह्य बना रहा। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, यादवगण भगवान से आंशिक रूप में अवगत थे, वे भी महिमावान हैं क्योंकि उन्हें अपने परिवार के प्रमुख के रूप में भगवान की संगति करने का अवसर मिला था, और उन लोगों ने भगवान की संगति अंतरंग सेवा भी की थी। यादवगण तथा भगवान के अन्य भक्त उन लोगों से भिन्न हैं जिन्होंने गलत आकलन द्वारा उन्हें सामान्य व्यक्ति मान लिया था। ऐसे लोग निश्चित रूप से माया द्वारा भ्रमित होते हैं, वे नारकीय होते हैं और भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उन पर माया अत्यंत बलपूर्वक कार्य करती है क्योंकि ऐसे लोग उच्च संसारी शिक्षा के बावजूद श्रद्धा विहीन होते हैं तथा नास्तिकता की मानसिकता से संदूषित होते हैं। वे लोग यह स्थापित करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं कि कृष्ण सामान्य पुरुष थे जो पृथ्वी के आसुरी राजाओं अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा जरासंध के को मारने का षड्यंत्र करने में के पापों के फल रूप एक शिकारी द्वारा मार डाले गए। वे भगवद गीता के इन कथनों में कोई विश्वास नहीं रखते कि भगवान कर्म फलों से अप्रभावित होते हैं। भगवान कहते हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे फले स्प्रह। नास्तिकतावादी दृष्टिकोण से के अनुसार भगवान कृष्ण का सारा परिवार यदुवंश, कृष्ण द्वारा धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करने आदि के फलस्वरूप किए गए पापों के कारण ब्राह्मणों से शापित होने से विनष्ट हो गए। ये लांछन भगवत भक्तों के हृदय को स्पर्श नहीं करते क्योंकि वे वास्तविकता जानते रहते हैं। भगवान के संबंध में उनकी बुद्धि कभी भी विचलित नहीं होती है, किंतु जो लोग आसुरों के कथनों से विचलित होते हैं
उनकी भी भर्त्सना की जाती है। इस श्लोक में उद्धव यही कहना चाहते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, लोग चाहे कुछ भी कहें कि कृष्ण ने युद्ध करवाया, कृष्ण ने छल करवाया, कृष्ण ने कपड़े चोरी किए, कृष्ण ने इतनी सारे, कुछ भी बोले, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनको इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान पे पूर्ण श्रद्धा होती है। वास्तविक भक्तों, ये श्रद्धा जो है वो बहुत बड़ी पूंजी। हमारे पास यदि कोई धन है, ये सबसे बड़ा धन है जिसको श्रद्धा कहते हैं। और डिवोशनल सर्विसेज डिपेंड्स 100% ऑन योर फेथ, है ना। भक्ति और कृष्ण पूरा का पूरा श्रद्धा का विषय है, जिसके अंदर श्रद्धा। भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा लेके आओ तभी तुम्हें समझ में आएगा। श्रद्धा बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। और श्रद्धा कहाँ से मिलती है? जिनके पास श्रद्धा होगी, जो श्रद्धावान भक्त है ना, उनका संग करने से, उनका सानिध्य प्राप्त करने से हमारी श्रद्धा में बहुत उन्नति होती है। और जब एक बार हमारी श्रद्धा कृष्ण के चरणों में टिक जाए, फिर दुनिया चाहे कुछ भी बोलती रहे एक कृष्ण के बारे में, लेकिन वो श्रद्धा इतनी तीव्र होनी चाहिए कि वो डगमगाए नहीं। यही शुद्ध भक्तों का लक्षण होता है। आगे उद्धव जी कहते हैं, प्रदर्श्या तप्त तपसाम अवितृप्त दृशाम निर्णाम आदायांतरधाद्यस्तु स्वबिंब स्वबिंबम लोकलोचनम प्रदर्श्या तप्त तपसाम अवितृप्त दृशाम नृणाम आधायांतरधाद्यस्तु स्वबिंबम लोकलोचनम प्रदर्श्य तप्त तपसाम। प्रदर्श्य मतलब दिखता कर, अतप्त यानी बिना किए, तपसाम यानी तपस्या, जिन्होंने तपस्या नहीं की थी, अवितृप्त दृशाम यानी दर्शन को पूरा किया, निर्णाम लोगों का, आदायंतर आदाय मन लेकर, अंत मन अंतर ध्यान, अधात संपन्न किया, यह जिससे तू लेकिन स्वबिंब अपने ही स्वरूप को लोकलोचनम यानी सर्वाजनक दृष्टि। अनुवाद, भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने पृथ्वी पर सबों की दृष्टि के समक्ष अपना नित्य स्वरूप प्रकट किया था, अपने स्वरूप को उन लोगों की दृष्टि से हटाकर अंतर ध्यान हो गए जो वांछित तपस्या ना कर सकने के कारण उन्हें यथार्थ रूप में देख पाने में असमर्थ थे। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक में अवितृप्त दृश्याम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भौतिक जगत में बद्धात्माएं विविध प्रकार से अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगी हुई हैं, किंतु वे वैसा करने में असफल रही है, क्योंकि ऐसे प्रयासों से तुष्ट हो पाना संभव नहीं। स्थल पर मछली का दृष्टांत अत्यंत उपयुक्त है। यदि कोई मछली को पानी से बाहर निकालकर स्थल पर रख देता है तो वह सुखी नहीं रह पाती, चाहे उसे कितना ही आनंद क्यों न प्रदान किया जाए। आत्मा परम पुरुष भगवान के ही सानिध्य में सुखी रह सकती है, अन्यत्र कहीं नहीं। भगवान की असीम अहितु की कृपा से उनके पास आध्यात्मिक जगत में ब्रह्म ज्योति मंडल में असंख्य वैकुंठ लोक और इस दिव्य जगत में जीवों के असीम आनंद के लिए अनंत व्यवस्था है। भगवान स्वयं अपनी उन दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित करने के लिए आते हैं जो विशेष रूप से वृंदावन मथुरा तथा द्वारिका में संपन्न की जाती हैं। वे बद्ध आत्माओं को शाश्वत लोक भगवत धाम के लिए आकृष्ट करने हेतु प्रकट होते, किंतु पर्याप्त पुण्य के अभाव में दर्शक गण भगवान की ऐसी लीलाओं के प्रति आकृष्ट नहीं हो पाते। भगवत गीता में कहा गया है कि जिन्होंने पाप कर्मों को पूरी तरह से लांग लिया है, वे ही भगवान के दिव्य प्रभा प्रेमा भक्ति में अपने को लगा सकते हैं। संपूर्ण वैदिक कर्म कांड का उद्देश्य प्रत्येक बद्ध आत्मा को पुण्य मार्ग पर लगाना है। समस्त वर्णों के लिए नियत नियमों का कड़ाई से पालन करने पर मनुष्य सत्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, धैर्य इत्यादि गुणों को प्राप्त कर सकता है और भगवान की शुद्ध शक्ति भक्ति करने के पद तक उठ सकता है। वैसे दिव्य दृष्टि से ही मनुष्य की भौतिक लालसाएं पूर्णतया तुष्ट हो जाती हैं। श्रील प्रभुपाद इतना सुंदर समझा रहे हैं। जीव सदैव सोचता है कि संसार में मैं सुखी हो जाऊं। सुखी होने के लिए बहुत प्रयत्न करता है, परंतु अपने वास्तविक सुख को जानता नहीं है कि वो भगवान का अंश है, और जब तक भगवान के साथ उसका मिलन नहीं हो जाता, भगवान का सानिध्य प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक सुखी होना संभव नहीं। जिस प्रकार मछली को संसार भर के सुख दे दिए जाएं, परंतु यदि जल से अलग कर दिया जाए तो वो तड़पती रहेगी, उसी तरह से जीव आत्मा भी सिसक रही है, तड़प रही है कृष्ण के विछोह में। और जीव इस भौतिक जगत के आकर्षण के कारण वो केवल भौतिक वस्तुओं से ही आनंदित होने का प्रयास कर रहा है, और ना जाने कितने करोड़ों जन्मों तक इस प्रयास में असफल होते हुए भी उसे ये समझ नहीं आती कि जीव का स्वरूप ही कृष्ण सेवा है। जब तक वो कृष्ण सेवा से नहीं जुड़ेगा, तब तक उसे आनंद नहीं आएगा। परंतु वो ये बात समझ नहीं पाते, क्योंकि ये शाम त्वंत गतम पापम जनानम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तो भजन्ते माम दृढ़व्रता। भगवान कहते हैं जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में पुण्य कर्म किए हैं और उनके पाप कर्मों के पूरी रीत से पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं, वही मेरी दिव्य भक्ति में लग सकते हैं। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी इसी बात को समझाते हुए कहते हैं कि समस्त वर्णों के लिए नियत नियमों का कड़ाई से पालन करने पर मनुष्य अपने नियत कर्मों को कड़ाई से पालन करना है, सत्य के ऊपर टिकना है, मन को निग्रह करना है, इंद्रियों को निग्रह करना है, धैर्य इत्यादि गुणों को प्राप्त कर सकता है और भगवान की शुद्ध भक्ति करने के पद तक उठ सकता है। जब ये सब रूल्स को फॉलो करके भगवान की भक्ति करता है, तो ऐसी दिव्य दृष्टि से ही मनुष्य की भौतिक लालसाएं, ये भौतिक लालसाएं ही हैं जो हमें भगवान तक पहुंचने नहीं देती। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, भगवत लीलाओं का श्रवण करते हैं, तो धीरे 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 अंदर से ये लालसाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। और आगे श्री प्रभुपाद कहते हैं, जब भगवान विद्यमान थे तो जो लोग उन्हें असली रूप में देखने की अपनी भौतिक लालसा पूरी कर सके, वे उनके साथ भगवत धाम वापस जा सके। किंतु जो लोग भगवान को यथारूप में नहीं देख पाए, वे भौतिक लालसाओं के से बद्ध रहे और भगवत धाम वापस नहीं जा सके। जब भगवान सबों की दृष्टि से परे चले गए, तो उन्होंने अपने आदि नित्य रूप में ऐसा किया जैसा कि श्लोक में कहा गया है। उन्होंने सशरीर प्रयाण किया, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा नहीं, जैसा कि बद आत्माएं सामान्य रूप में गलती से समझती हैं। यह कथन उन श्रद्धाविहीन अभक्तों के इस मिथ्या प्रचार को जुठला देता है कि भगवान सामान्य बद आत्मा की तरह द्विंगत हुए। भगवान इस जगत के अविश्वासी असुरों का अनुचित भार हटाने के लिए प्रकट हुए थे, और ऐसा करने के बाद संसार की दृष्टि से ओझल हो गए। श्री प्रभुपाद जी भगवान के जाने के विषय में बोलते हैं कि लोग क्यों समझते हैं कि भगवान सामान्य तया जिस तरह से सामान्य लोग की मृत्यु होती है ऐसे हुई। भगवान प्रकट हुए और फिर अपनी लीलाओं को करने के बाद, संसार का भार हटाने के बाद अप्रकट हो गए, वो चले गए। वरना तो ऐसा होता ना, कहीं जहां पर भगवान की जन्मभूमि है तो कहीं ना कहीं अगर भगवान का शरीर होता तो कहीं ना कहीं उनकी समाधि भी होती। लेकिन भगवान का शरीर दिव्य है, भगवान में शरीर और आत्मा का भेद नहीं। जैसे हमारे अंदर क्या है, हमारा पूरा शरीर हार्ड मास से, ये प्रकृति से बना हुआ है, उसके पांच भूत से बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। और हमारे अंदर आत्मा कितनी है, आत्मा तो बालाग्रे शत भागस्य शतधा कल्पितस्य च, बाल के अग्रभाग के भाग के 10,000वें हिस्से के मतलब पॉइंट के बराबर भी नहीं है आत्मा। रियल जो जिसके कारण हम जी रहे हैं वो आत्मा तो जरा सी है, परंतु भगवान का पूर्ण स्वरूप जो है वो दिव्य है। भगवान पूरे के पूरे आत्मा है, उनका कोई शरीर और शरीरी का भेद नहीं है। तब जब वो लीला समाप्त करते हैं तो अपने ही स्वरूप में वापस से चले जाते हैं, किसी और ब्रह्मांड में लीला करते हैं। उद्धव जी, बहुत ही सुंदर भगवान के संसार में प्रकट होने को विस्तार से बता रहे हैं कि भगवान का आना एक अंतरंग शक्ति यानी योग माया के द्वारा भगवान इस लोक में प्रकट होते हैं और अपनी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। हर कोई इन लीलाओं को बहुत ही आश्चर्यजनक स्वरूप में देखता है और कोई भी इन लीलाओं की वास्तविकता को समझ नहीं पाता। और भगवान स्वयं ही परम पदम भूषण भूषणांगम यानी श्री कृष्ण जो है दिव्य शरीर समस्त आभूषणों का भूषण है। वे कहते हैं यन्मर्त्य लीला पैकम सयोगम आया बलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनम सस्य च सौ भगत गर्दे परम पदम भूषण भूषणांगम यन्मर्त्य लीला पैकम सयोगम आया बलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौमगर्दे परम परम भूषण भूषणांगम यन्मर्त्य लीला पैकम स्वयोगम यन्मन उनका जो नित्य मर्त्य यानी मर्त्य जगत लीला उपैकम यानी लीलाओं के लिए उपयुक्त स्वयोग माया बलम अंतरंग शक्ति का बल दर्शयता अभिव्यक्ति के लिए गृहीतम ढूंढ निकाला विस्मापनम अद्भुत स्वस्य अपना च तथा सौभग रिद्धे अर्थात ऐश्वर्य का परम पदम यानी परम गंतव्य भूषण भूषणांगम भूषण मतलब आभूषण और भूषणांग मतलब आभूषणों का। अनुवाद देखिए, भगवान अपनी अंतरंग शक्ति योग माया के द्वारा मृत्यु लोक में प्रकट हुए। वे अपने नित्य रूप में आए जो उनकी लीलाओं के लिए उपयुक्त है। ये लीलाएं सबों के लिए आश्चर्यजनक थी, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें अपने ऐश्वर्य का गर्व है, जिसमें वैकुंठपति के रूप में भगवान का स्वरूप भी सम्मिलित है। इस तरह उनका यानी श्री कृष्ण का दिव्य शरीर समस्त आभूषणों का आभूषण है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वैदिक स्त्रोत्रों के अनुसार नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम सविद्धातिकामनाम। भगवान भौतिक जगत में समस्त ब्रह्मांडों के भीतर के अन्य सारे जीवों की उपेक्षा अधिक उत्कृष्ट हैं। वे समस्त जीवों में प्रधान हैं। धन बल यश सौंदर्य ज्ञान अथवा त्याग के क्षेत्र में ना तो कोई उनके समक्ष है ना उनसे बढ़कर है। जब भगवान कृष्ण इस ब्रह्मांड में थे तो वे मनुष्य प्रतीत होते थे, क्योंकि वे मृत्यु लोक की अपनी लीलाओं के लिए उपयुक्त रूप में प्रकट हुए थे। वे मानव समाज में अपने चतुर्भुजी वैकुंठ स्वरूप में प्रकट नहीं हुए थे, क्योंकि यह स्वरूप उनके की लीलाओं के उपयुक्त ना होता, किंतु मनुष्य के रूप में प्रकट हुए होते हुए भी कोई व्यक्ति विविध षडेश्वर्य में से किसी एक में भी ना तो उनके तुल्य था ना है। हर व्यक्ति इस जगत में अपने ऐश्वर्य के प्रति न्यूनाधिक गर्वित होता है, किंतु जब भगवान कृष्ण मानव समाज में थे तो वे ब्रह्मांड में अपने समस्त समकालीन व्यक्तियों में से बढ़कर थे। जब भगवान की लीलाएं मनुष्य को दृष्टिगोचर होती हैं तो वे प्रकट कहलाती हैं, और जब वे दृष्टिगोचर नहीं होती हैं तो वो अप्रकट कहलाती हैं। वस्तुतः भगवान की लीलाएं कभी नहीं रुकती। जिस तरह सूर्य कभी आकाश को नहीं छोड़ता, सूर्य सदैव आकाश में सही कक्षा पर बना रहता है, किंतु हमारी सीमित दृष्टि से वह कभी दिखता है तो कभी ओझल हो जाता है। उसी तरह भगवान की लीलाएं सदैव किसी न किसी ब्रह्मांड में चलती रहती हैं। जब कृष्ण द्वारिका के दिव्य धाम के से अंतर्ध्यान हो गए तो यह वहां के लोगों की आंखों से उनका ओझल होना था। इससे यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि उनका दिव्य शरीर, जो मृत्यु लोक की लीलाओं के लिए उपयुक्त था, वैकुंठ लोक में उनकी विभिन्न अंशों से किसी तरह निष्कृष्ट था। भौतिक जगत में प्रकट होने वाला उनका शरीर इस बात में सर्वोत्कृष्ट है कि मर्त्य लोक में उनकी लीलाएं वैकुंठ लोक में प्रदर्शित उनकी कृपा से बढ़कर हैं। वैकुंठ लोक में भगवान मुक्त या नित्य मुक्त जीवों के प्रति ही दयालु होते हैं, किंतु मर्त्य लोक में मर्त्य जगत की अपनी लीलाओं में वे उन पतित आत्माओं पर भी दयालु होते हैं जो नित्य बद्ध हैं। मर्त्य लोक में अपनी अंतरंग शक्ति या योग माया के द्वारा प्रदर्शित षडेश्वर्य वैकुंठ लोक तक में दुर्लभ हैं। उनकी समस्त लीलाएं किसी भौतिक शक्ति द्वारा नहीं अपितु आध्यात्मिक शक्ति द्वारा प्रदर्शित की गई हैं। वृंदावन में उनकी रास लीला की अनुपमता तथा 16,000 पत्नियों के साथ उनका ग्रस्त जीवन वैकुंठ में नारायण के लिए भी आश्चर्यजनक है, और इस मृत्युलोक के अन्य जीवों के लिए भी निश्चित रूप से ऐसा ही है। उनकी लीलाएं भगवान के अन्य अवतारों के लिए भी, यथा श्री राम, नरसिंह तथा वराह के लिए भी आश्चर्यजनक है। उनका ऐश्वर्य इतना सर्वोत्कृष्ट था कि उनकी लीलाओं को की प्रशंसा वैकुंठ के स्वामी द्वारा भी की गई, जो कि स्वयं भगवान कृष्ण से भिन्न नहीं है। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर रीति से समझाया कि भगवान की ऐसी ऐश्वर्यमय लीला है जो भगवान के अवतारों को यहाँ तक के वैकुंठ में बैठे वैकुंठपति को भी आश्चर्यचकित कर देती हैं, क्योंकि बाकी सब ऐति चंद कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बाकी सब भगवान के अंश और कला हैं, और कृष्ण तो साक्षात भगवान हैं, और वो मनुष्य शरीर धारण करके भी इतने अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य करते हैं जो देख के सब विस्मित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आगे उद्धव जी बहुत ही सुंदर रीति से भगवान को निरीक्षण करते हुए कहते हैं कि भगवान इतने आश्चर्यजनक स्वरूपों को, इतने आश्चर्यजनक कार्यों को देखकर, जब युधिष्ठिर महाराज द्वारा याजसूय यज्ञ में जो बड़े बड़े लोग थे महान, और यहाँ तक के बहुत सारे लोगों के देवता भी वहाँ पर थे, तो वो सब देखकर भगवान को पता है कैसा सोचते थे। वो सोचते थे कि ब्रह्मा जी के पास किसी जीव को बनाने की जो कला है वो पूरी की पूरी उन्होंने कृष्ण को बनाने में संपन्न कर दी, समाप्त कर दी। सारा का सारा जो उनका कौशल है, जो उनकी दक्षता है, उनका सारा का सारा स्किल इस कृष्ण को बनाने में खर्च हो गया है। इतना तो कृष्ण को परफेक्ट बना, हालांकि ब्रह्मा जी की क्रिएशन नहीं है कृष्ण, लेकिन कृष्ण इतने अद्भुत हैं कि उनको समझना संभव ही नहीं है। और वैसे भी जो बुद्धि में आ जाए वो खुदा क्यों करूँगा, ये समझने की नहीं, ये प्रेम करने की चीज़ है। इसलिए भगवान को बुद्धि के द्वारा समझा नहीं जा सकता, लेकिन भगवान को हृदय के द्वारा प्रेम किया जा सकता है। और यही हमारी पूर्णता है कि हम कृष्ण से प्रेम करें और कृष्ण को अपना संपूर्ण प्रेम प्रदान करने में ही जीव का वास्तविक कल्याण है। उद्धव जी कहते हैं, यथर्म सुनोर बतराज सुये निरीक्ष दृक् स्वस्त्ययनम त्रिलोका काश्न्येन चोदेहं गतविद् काश्येन चादेह गतं विधातुर् अर्वाक्सृतौ कौशलमृत्यमन्यत् यद्धर्मसूनो बतराज सूये निरीक्ष दृक् स्वस्त्ययनं त्रिलोका काश्येन चादेह गतं विधातुर् अर्वाक्सृतौ कौशलमित्यमन्यत् यद्धर्मसूनोर् बतराजसूये। यद् मन जो रूप धर्म सुनो, धर्मराज युधिष्ठिर के बत निश्चय ही राजसूय यानी राजसूय यज्ञशाला में निरीक्ष दृक् स्वस्ययनम त्रिलोके, निरीक्ष देख कर, दृक् दृष्टि, स्वस्ययनम अर्थात मनोहर त्रिलोक तीनों लोकों के मन को हरने वाला जो स्वरूप राजसूय यज्ञ में भगवान ने प्रकट किया। काशीन चादेह गतम विधा काशीन संपूर्ण च इस तरह अध्य आज इह इस ब्रह्मांड के भीतर गतम यानी पार करके विधातुर यानी सृष्टा का, सृष्टा यानी ब्रह्मा जी का अर्वाक यानी प्राचीन मानव अर्वाक श्रितो कौशलमित्यमन कौशल श्रितो मतलब भौतिक जगत में कौशलम यानी दक्षता इति इस प्रकार मन्यत वो सोच रहे थे कि ब्रह्मा जी का कौशल जो उनका जो दक्षता है वो इसी मनुष्य को बनाने में उन्होंने खर्च किया। उनको ऐसा लग रहे थे कि कृष्ण कितने दक्ष कैसे हो सकते हैं, और कृष्ण का स्वरूप इतना अद्भुत था कि वो समझ नहीं पा रहे थे। महाराज अनुवाद देखिए, महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न किए गए राजसूय यज्ञशाला में उच्चतर मध्य तथा अधोलोकों के सारे देवता एकत्र हुए। उन सबों ने भगवान कृष्ण के सुंदर शारीरिक स्वरूप को देखकर विचार किया कि वे मनुष्यों के सृष्टा ब्रह्मा की चरम कौशलपूर्ण सृष्टि हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जब भगवान कृष्ण इस जगत में वर्तमान थे तो उनके शारीरिक स्वरूप की तुलना करने वाली कोई वस्तु नहीं थी। मतलब वो जो कृष्ण की सुंदरता थी उसकी बराबरी किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती थी। तो जो हम तुलना करते हैं तो वो सारी वस्तुएं जो हैं वो बहुत क्षीण लगती थी, बहुत ही असक्षम लगती थी भगवान के स्वरूप की तुलना करने के लिए। भौतिक जगत के सुंदरतम पदार्थ की तुलना नीले कमल से या आकाश में पूर्ण चंद्रमा से की जा सकती है, किंतु कमल तथा चंद्रमा भी कृष्ण के शारीरिक सौंदर्य के समक्ष पराजित हो जाते थे। जिसकी पुष्टि ब्रह्मांड के सबसे सुंदर प्राणियों अर्थात देवताओं द्वारा की गई, देवताओं ने सोचा कि उन्हीं की तरह भगवान कृष्ण भी ब्रह्मा द्वारा सृजित हुए, जबकि तथ्य यह है कि ब्रह्मा का सृजन भगवान कृष्ण द्वारा हुआ है। भगवान के दिव्य सौंदर्य का सृजन करना ब्रह्मा की शक्ति में ना था। कोई भी व्यक्ति कृष्ण का सृष्टा नहीं है, प्रयुक्त वे हर एक के सृष्टा है। श्रीमद् भगवद गीता 10.8 में कहा गया है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत तत्तः सर्वं प्रवर्तते। मैं संपूर्ण भौतिक और जगत, भौतिक और आध्यात्मिक जगत का सृष्टा हूँ। तो यहाँ पर उद्धव जी भगवान के विषय में सुना रहे हैं कि वो इतने आश्चर्यजनक हैं, इतने अद्भुत कार्य करते हैं, इतने सुंदर हैं और इतने अलौकिक हैं कि हमारी बुद्धि के द्वारा किसी की, देवता भी भगवान को ना हम वेद न तपस्या, भगवान कहते हैं मुझे न मे विदु सुरकणाः प्रभवं नमहर्षय अहमादेहि देवानां महर्षीणां च सर्व, कि ना तो मुझे देवतागण जान सकते हैं ना महर्षि जान सकते हैं, क्योंकि मैं हर तरह से देवताओं और महर्षियों के भी प्रकट का कारण हूँ। तो यहाँ भगवान के अद्वितीय स्वरूप की व्याख्या करते हुए उद्धव आगे हमें भगवान के विषय में बहुत कुछ सुनाएंगे। ये जो भक्तों के विषय की, भक्तों के मध्य की जो वार्ता होती है उसको श्रवण करने से बहुत लाभ होता है, क्योंकि हमारे हृदय में भी भगवान के प्रति वो प्रेम और आकर्षण उत्पन्न होता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। मैं उनके लिए सदैव ऋणी रहूँगी कि मैं अपनी सेवा करने का प्रयास कर रही हूँ। मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है और ना ही मैं इस योग्य हूँ कि मैं इतना पवित्र कार्य श्रीमद् भागवतम पढ़ के सुना रही हूँ। बस आप सबकी प्रार्थनाओं के आधार पर ही यह संभव हो पा रहा है। कृपया सदैव मुझे अपनी प्रार्थनाओं का हिस्सा बनाए रखिए। हम इसी जीवन में श्रीमद् भागवतम को पढ़कर अपने जीवन को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर सकें, ये हमारी सबसे बड़ी इच्छा है। आप सबका बहुत बहुत आभार। कृपया साथ रहिएगा, प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। हरे कृष्ण।